चैप्टर 3 क्या अरमान आस्था को कॉलेज परमिशन देगा? अविनाश की खोज। अब आगे। जल्दी ही आस्था ने अरमान को देखा। वो अरमान की बेस्ट काली कॉफी यानी ब्लैक कॉफी लेकर वहां आई और टेबल पर रखी। अरमान को पता चल चुका था कि आस्था इस वक्त कमरे में है, लेकिन उसने मुड़कर आस्था की ओर नहीं देखा। फिर आस्था अपने छोटे छोटे से कदम बढ़ाती हुई सीधा अरमान के पास गई। पीछे से उसने अरमान को जोरों से गले से लगा लिया और उसकी पीठ को गले से लगाकर सॉफ्ट वॉइस में बोली, आई एम सॉरी हब्बी, प्लीज माफ कर दीजिए ना। अब आगे। पता नहीं हमें क्या हो गया है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन सा हो रहा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझेंगे और हमें माफ कर देंगे। अब जैसे ही आस्था ने थोड़े से प्यार से ये सारे इमोशंस बताए, अरमान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। बड़ी ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसने फटाफट पीछे मुड़कर आस्था को अपने सीने से लगा लिया था और उसके होठों को चूमकर बोला, कोई बात नहीं वाइफी। वैसे भी मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी वाइफ एक नंबर की आफत है और वो कब क्या करती है उसे खुद पता नहीं होता है। तब आस्था अरमान के बटन के साथ खेलते हुए बोली, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तब आस्था बड़ी ही मोहब्बत और शफकत से बोली, हम अकेले घर में इस तरह से नहीं रह सकते हैं, ऊपर से हम प्रेग्नेंट हैं, हमारा मूड स्विंग होता है, इसीलिए हम कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं। अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, लेकिन इस वक्त तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें कॉलेज में भेज दूं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इतनी सी भी कोई प्रॉब्लम आए। आस्था अरमान की ओर देखते हुए क्यूटली बोली, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमें प्यार करते हैं, इसीलिए आप हम पर इतनी सी भी आँच नहीं आने देना चाहते हैं, लेकिन आपको हमारी बात भी तो समझनी होगी ना, और प्लीज़ 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम कॉलेज जाना चाहते हैं, हमारे घर पर दिल नहीं लग रहा है, आपने हमें पढ़ाई करने की इजाज़त दे दी है, साथ ही साथ हमें हमारा सपना पूरा करने के लिए इजाज़त दी है, लेकिन ये इजाज़त अधूरी है, हम इस तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, और अगर हमें लगेगा कि हमें अब आराम करना है तो हम आराम करेंगे, पर प्लीज़ हमें जाने की इजाज़त दे दीजिए। सारी बात बोलकर आस्था ने गहरी सांस ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि अरमान आस्था को अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था, वो उसे इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होने देना चाहता था, और फिर जब से अबीर सिंह राठौर का मसला हुआ था तब से उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो आस्था को मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उसने आस्था को एक सपाट लुक दिया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज में जाने की इजाज़त दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं खुद कॉलेज में जाकर अच्छी तरह से अपनी तहकीकात करना चाहता हूँ, अगर मुझे लगा कि कॉलेज तुम्हारे लिए सेफ है तो मैं तुम्हें कॉलेज भेजूंगा, वरना मैं तुम्हें कॉलेज नहीं भेजूंगा। अब अरमान की बात सुनकर आस्था के चेहरे पर खुशी वाली चमक आ गई थी और उसने तुरंत अरमान को जोरों से गले से लगाकर खुद से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और किस करने लगी। आस्था के ऐसा करने पर अरमान का चेहरा भी एकदम गुलाब की तरह खिल उठा था। वहीं अरमान के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, क्योंकि अरमान रियलिटी में जीता था और वो अच्छी तरह से जानता था कि उसकी बीवी के लिए क्या सेफ है क्या नहीं है। भले ही आस्था मेडिकल कॉलेज जाने की जिद कर रही थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में भी कितने हादसे हो रहे थे ये बात वो अच्छी तरह से जानता था, और स्पेशली लड़कियों के साथ। इसीलिए अरमान आस्था की जिंदगी के साथ किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिलहाल अब आस्था के इस तरह से बातें करने पर और साथ ही साथ नानी माँ की बात याद आने पर इस वक्त वो किस तरह की मूड स्विंग्स में जिद कर सकती है, क्या क्या कर सकती है, ये सारी बातें सोचकर अरमान ने डॉक्टर रश्मि से बात करने का फैसला कर लिया था, और जल्दी ही अरमान डॉक्टर रश्मि के साथ मौजूद था। आस्था को आराम करने का कहकर वो डॉक्टर रश्मि के पास चला गया था और उसे कहना शुरू कर दिया, क्या आस्था का इस हालत में कॉलेज जाना सही रहेगा? तब डॉक्टर रश्मि ने भी आस्था के बारे में बातें करते हुए कहा, देखिए, जितना वो लोगों से मिलेगी जुड़ेगी, साथ ही साथ अपने मन मुताबिक अपनी मर्जी का काम करेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगी, तो वो बिल्कुल हेल्थी रहेगी, कोई मसला नहीं है, और अगर वो कॉलेज ज्वाइन करना चाहती है तो आप करवा सकते हैं, और अगर कुछ कोई परेशानी होगी तो उसके लिए रौनक है ना, वो हमें इन्फॉर्म कर देंगी, और साथ ही साथ मैं भी उसे 24 घंटे कनेक्ट रहूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ऐसा बोलकर रश्मि ने अरमान को बता दिया था कि वो आस्था को कॉलेज जाने की इजाज़त दे सकता है। रश्मि की बात सुनकर अरमान थोड़ा सा कन्विंस हुआ था और उसने सोचा कि एक बार वो पहले जाकर खुद कॉलेज में अच्छी तरह से सारी चीज़ों की तसल्ली कर ले, उसके बाद वो आस्था को कॉलेज जाने देगा या नहीं जाने देगा इसके बारे में सोचेगा। इसके लिए अरमान ने फटाफट से अपने कुछ खबरियों को काम पर लगा दिया था और देव को इसकी पूरी जिम्मेदारी दे दी थी कि वो जाकर अच्छी तरह से आस्था के कॉलेज को चेक करे कि वहां पर कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो उसे नुकसान पहुंचा सके या कुछ भी, इसीलिए हर तरह से उसकी जांच की जाए। उसके बाद वो 3 दिनों तक अच्छी तरह से पहले कॉलेज की जांच करेगा, उसके बाद अरमान उसे वहां जाने की इजाजत देगा। साथ ही साथ अरमान के वहां से जाने के बाद रश्मि ने रौनक को भी बता दिया था कि अब आस्था कॉलेज ज्वाइन करेंगी, तो रौनक के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि जब से आस्था कॉलेज से गई थी उसका बिल्कुल भी कॉलेज में दिल नहीं लग रहा था। लेकिन अब तो एक बार फिर से आस्था ने अपने प्यार से अरमान को कन्विंस कर लिया था, और प्यार में इतनी ताकत थी कि वो बड़े बड़े चीज को पिघला सकता था। तो ये तो फिर अरमान सिंघानिया का दिल था, जिसे आस्था बहुत पहले ही जीत चुकी थी। वेल, जल्दी ही अरमान ने आस्था को कॉलेज में जाने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि वो आस्था को इस हालत में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। और जब से आस्था स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई थी, तो तब से उसे आस्था की कुछ ज्यादा ही फिक्र होने लगी थी, और अरमान अब सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी आस्था और अपने बच्चों पर वो इतनी सी भी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और वो ये समझ चुका था कि ये आस्था की खुशी कॉलेज जाने में है, तो इसीलिए अरमान ने अपनी अच्छी तरह से तहकीकात करने के बाद साथ ही साथ प्रोफेसर तक को अपना आदमी बनाकर वहां भेजकर उसने पूरे कॉलेज को पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया था। वो सिर्फ और सिर्फ आस्था को खुश देखना चाहता था, इसीलिए आस्था के लिए किसी भी तरह की वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उसने पूरा इंतजाम कर दिया था। नानी माँ को जैसे ये पता चला कि आस्था एक बार फिर कॉलेज जाने की जिद करती है, और इस बार उसके पति अरमान खुद उसे कॉलेज भेजना चाहते हैं, तो नानी माँ की आंखें हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि नानी माँ समझ चुकी थी कि आस्था का कॉलेज ज्वाइन करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। आस्था डेस्परेटली उस डॉक्टर को ढूंढना चाहती थी, जिस डॉक्टर ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दिया है, और उसे उसकी असली पहचान छीनी थी। इसीलिए अब आस्था हर हाल में उस डॉक्टर तक पहुंचना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर अविनाश रघुवंशी इस वक्त अपनी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग फाइनलाइज कर रहा था। ठीक उसी वक्त उसकी सेक्रेटरी उसके पास आई। अविनाश ने केवल एक नजर उठाकर एंजल की ओर देखा और अपने एक्सप्रेशन बिगाड़ते हुए बोला, बोलो क्या काम से लाई हो यहां पर? तब एंजल ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं पहली बार इंडिया आई हूं और मैं इंडिया घूमना चाहती हूं, प्लीज आप एक दिन की छुट्टी निकालकर और मुझे इंडिया घुमाने ले चलें। एंजल ने यह बड़े ही हक से कहा था। हालांकि एंजल ने जब अपनी सेक्रेटरी की जॉब अविनाश से हासिल की थी, तो तब उसने अपना फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो बताया था,
साथ साथ ये बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वो ये जॉब करना चाहती है, और अविनाश ने उसे तरस खाकर रख भी लिया था। लेकिन अब पूरे 5 सालों में अविनाश से इतना ज्यादा घुल मिल गई थी कि वो उसे ऑर्डर तक देने लगी थी। तब अविनाश ने मुंह पिचका कर कहा, तुम जानती भी हो किसके सामने खड़ी होकर क्या बात कर रही हो? ये क्या तरीका हुआ अपने बॉस से बात करने का? अविनाश ने तुरंत एंजल को फटकार दिया था, और एंजल तुरंत अपना मुंह बनाते हुए अपने मन में खुद से बोली, मैंने क्या कर दिया? मुझे इस तरह से एटीट्यूड में अपने बॉस से बात नहीं करनी चाहिए थी, वरना ये मुझे उठाकर जॉब से बाहर भी फेंक देगा और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। तब एंजल जल्दी से अपनी बात को करेक्ट करते हुए हल्की मुस्कान लाते हुए बोली, नहीं नहीं बॉस, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे इंडिया घुमा कर लेकर आइए, प्लीज़ प्लीज़। ऐसा बोलकर एंजल ने जल्दी ही रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तब अविनाश के चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कान थी, क्योंकि अविनाश का भी एक मकसद था जिसे वो पूरा करना चाहता था, और अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। उसके दादाजी, जो कि अपाहिज थे और व्हीलचेयर के अधीन हो गए थे, उनके सिर्फ और सिर्फ इकलौती ख्वाहिश बची थी कि वो अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपनी पोती को देखना चाहते थे। इसीलिए अविनाश ने पिछले 15 सालों से जो लीड के थ्रू उसने हर जगह तहकीकात की थी, और उसे गौरी के बैंगलोर में होने का क्लू मिला था, तो इसीलिए वो यहाँ बैंगलोर में गौरी को ढूंढने के लिए आया था। क्योंकि लास्ट टाइम गौरी ने वो पेंडेंट जब पहना था, तब उसका एक छोटा सा अबीर सिंह राठौर से एक्सीडेंट हुआ था, और होटल में वो वेटर उसका पेंडेंट लेना चाहता था। तभी होटल के CCTV में आस्था का वो लॉकेट कैप्चर हो गया था, जिसकी वीडियो एक वेटर ने सोशल मीडिया पर लाइव कर दी थी, और उसे लॉकेट को देखते ही अविनाश रघुवंशी ने पहचान लिया था कि ये पेंडेंट वही लॉकेट है जो कि उसकी बहन के पास था, यानी कि गौरी के पास था, तो जिसे वो हर हाल में ढूंढना चाहता है। और वही लॉकेट को उस डॉक्टर राजवीर ने भी देख लिया था, तो इसीलिए वो कि पागलों की तरह पूरे शहर में उस लॉकेट वाली लड़की को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे CCTV फुटेज में आस्था का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो लॉकेट साफ दिखाई दे रहा था, जिसकी बदौलत अब अविनाश बैंगलोर में आया था, और इसीलिए उसने हर जगह जाकर आस्था को ढूंढना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो होटल में भी पहुंचा था, जिस होटल की CCTV फुटेज वहां के एक वेटर ने सोशल मीडिया पर डाली थी। लेकिन सुमित ने वक्त रहते सारी फोटोज जो वहां से हटा दी गई थी, लेकिन फिर भी उस वक्त अविनाश वो फुटेज देख चुका था, तो इसीलिए वो यहां आया था। वेल, अब एंजल के इस तरह से बोलने पर कि वो इंडिया घूमना चाहती हैं, अविनाश ने उसे एक सपाट लुक दिया और कुछ सोचते हुए बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा कोई रिलेटिव यहां रहते हैं, तो तुम उनके घर भी कुछ दिनों के लिए जाकर रह सकती हो। डोंट वरी, मैं तुम्हारी सैलरी कट नहीं करूंगा। अब जैसे ही अविनाश ने ये कहा, एंजल का पूरी तरह से मुंह बन गया था। एंजल इंडिया घूमना चाहती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अविनाश के साथ। लेकिन उसके ये कहने पर कि वो अगर इंडिया घूमना चाहती है तो वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा सकती है और वहाँ से जाकर घूम सकती है, तो उसका मूड पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका था। लेकिन वो अविनाश को सब उसके मुंह पर कुछ नहीं कह सकती थी और वो हड़बड़ाहट से बोली, नहीं नहीं सर, हाँ मैं घूमना चाहती हूँ, लेकिन इतना डेस्परेटली भी घूमना नहीं चाहती हूँ कि मुझे काम ही छोड़ना पड़े। कोई बात नहीं, मैं बिना घूमे रह सकती हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं काम करूँगी। लेकिन तब तक अविनाश चेयर से उठते हुए बोला, शायद आपने ठीक से सुना नहीं, आप आज के आज ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रही हैं, क्योंकि मैं अपने पर्सनल काम के चक्कर में आपका इस तरह से घूमना खत्म नहीं करवा सकता हूँ, तो इसीलिए आप पूरा एक हफ्ते का ऑफ ले सकती हैं और उसके बाद यहाँ आ सकती हैं। अब मेरा डिसीजन ले चुका हूँ, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अविनाश रघुवंशी अपना डिसीजन किसी भी कीमत पर नहीं बदलता है। अब जैसे ही अविनाश ने ये कहा, एंजल ने खुद के सर पर एक चपेट लगा दिया कि ना तो घूमने की बात कहती और ना ही एक हफ्ते के लिए अविनाश उसे खुद से दूर करता। अब तो उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब अविनाश ने फैसला कर चुका था और उसका फैसला बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसीलिए अपने मन में अविनाश को कोसकर एंजल अपनी पैकिंग करने लगती है और एक नज़र अविनाश की ओर देखकर मन ही मन में उसे कोसते हुए बोली, अकड़ू कहीं का, एक बार मैं इसकी बीवी बन जाऊं फिर बताऊंगी इसको। वेल, जल्दी ही वो वहां से निकल गई थी। वहीं एंजल के जाने के बाद अविनाश ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर जल्दी ही एक बार फिर से गोरी की फोटो में खो गया था। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज, और अपना साथ बनाए रखें। टेक केयर टू यू ऑल।